بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، کاریکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کے سورہ زحا کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ قاری ہیں ہاشم روغنی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحا والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل و دیاوان ہے۔ سوگند ہے دن کی جب وہ چھا جائے، اور رات کی جب اس کا سناٹا چھا جائے، اور ہے پیغمبر، آپ کے پالنہار نے آپ کو نہ تو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے اپرسن ہوا ہے، اور نشچے ہی پرلے آپ کے لیے سنسار سے اتم ہے، اور شیگر ہی آپ کا پالنہار آپ کو اتنا پردان کرے گا کہ آپ پرسن ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو اناتھ پایا اور شرن نہیں دی، اور آپ کو مارگ سے دور پایا تو گنتویہ تک نہیں پہنچایا، اور آپ کو نردھن پایا تو سمردھ نہیں کر دیا؟ اتہ اناتھ پر کرودھ نہ کیجیے اور مانگنے والے کو نہ جھڑکیے، تتھا اپنے پالنہار کی انوکمپا کا ورنن کرتے رہیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، کارکرم میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ آج شکروار ہے، ستمبر کی 16، سفر کی 19 اور شہریور ماہ کی 25 تاریخ۔ ایک گھنٹے تک چلنے والی اس سبھا کا آرمبھ وگت کی ہی بھانتی وشو سماچاروں سے کیا جائے گا۔ وشو سماچاروں کے بعد آپ راجنیتک چرچا کا دینک کارکرم سنیں گے۔ راجنیتک چرچا کے دینک کارکرم کے اپرانت ہم آپ کو 40 پد یاترا کے سمبندھ میں ایک وشیش کارکرم سنوائیں گے۔ ہماری آج کی سبھا کا انتم کارکرم ہوگا پتر سنسار۔ تو دوستو، یہ تھی روپ ریکھا۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے کارکرموں کو آپ اپنی سویدھا کے انوسار ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ سائٹ پر وزٹ کے لیے آئیے partstoday.com/hi پر۔ اور اب کچھ ہی چھڑوں میں ریڈیو تہران سے وشو سماچار پیش کیے جائیں گے۔ یہ تہران ہے، اب آپ وشو سماچار سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آج کے پرمکھ سماچاروں کا سارانش۔ راشٹرپتی رئیسی نے کہا ہے کہ ہم پوری شکتی کے ساتھ ایرانی راشٹر کے ہتوں کی رکشا کریں گے۔ امریکہ میں سائبر حملوں میں لپت ہونے کے آروپ کا ایران نے کھنڈن کیا ہے۔ فرانس میں ارجا سنکٹ کے کارن بجلی اور گیس کے مولیوں میں وردھی کی جانے والی ہے۔ راہل گاندھی کہتے ہیں کہ بھارت کا اشکشت یوا روزگار کی تلاش میں در در بھٹک رہا ہے۔ اور اب آپ وستار سے قائم رضوی سے وشو سماچار سنیے۔ راشٹرپتی نے کہا ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ ہم ایرانی جنتا کے ادھیکاروں کی رکشا کریں گے۔ سید ابراہیم رئیسی نے سمرقند میں الجزیرہ ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پرمانو سمجھوتے کی پراپتی کے لیے فیصلہ کرنے کی ذمہ داری اس چرن میں کیول امریکہ پر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پوری طاقت کے ساتھ ایرانی جنتا اور ایران کے ادھیکاروں کی رکشا کرنے کا ہمارا مضبوط ارادہ ہے۔ امریکہ سے وارتا کے بارے میں پوچھے گئے سوال میں انہوں نے کہا کہ امریکہ سے سیدھی وارتا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے تہران اور سعودی عرب کے بیچ وارتا کے بارے میں کہا کہ اب تک 5 چرڑ کی وارتائیں ہو چکی ہیں اور آگے بھی ان وارتاؤں کا کرم جاری رہے گا۔ روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتین نے شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کی بیٹھک کے دوران ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ تہران اور ماسکو کے بیچ پرسپر سہیوگ کا رنیتک سمجھوتا اپنے انتم چرن میں ہے۔ شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کی بیٹھک کے افسر پر روسی راشٹرپتی اور ایران کے راشٹرپتی کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں کہا گیا ہے کہ سارے کھیتروں سے سمبندھ وسطت ہو رہے ہیں اور دوپکشی سمبندھوں کو وسطت کرنے والا رڑنیتک سمجھوتا اپنے انتم چرن میں ہے، جسے دونوں دیشوں کے سمبندھ میں ایک نئے استر پر پہنچانے کی یوجنا ہے۔ روس کے راشٹرپتی نے کہا کہ ایران کے شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کی سدستا کے لیے جو بھی آوشک ہوا اسے ہم انجام دیں گے۔ ईरान ने कड़ाई से उन अमरीकी आरोपों का खंडन किया है जिनमें अमरीका ने ईरानी कंपनियों पर इस देश में होने वाले साइबर हमलों में लिप्त होने का आरोप लगाया था। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि दुनिया के स्वतंत्र देशों के विरुद्ध गैर कानूनी और असामान्य अमरीकी रवैया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में उसकी विफलता की निशानी है। उन्होंने कहा कि ईरान के विरुद्ध प्रोपेगेंडा और झूठी सूचनाएं फैलाना अमरीका की विफल नीति का हिस्सा है और ये उसके किसी भी काम नहीं आएगी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमरीका ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर साइबर हमले के बारे में चुप्पी साध रखी है, बल्कि परोक्ष या अपरोक्ष इन हमलों में उसने मदद भी की है। उन्होंने ईरान पर होने वाले साइबर हमलों के बारे में कहा कि ईरान एक ऐसा देश है जिस पर बारंबार साइबर हमले हुए हैं और ईरान साइबर हमलों के खतरों से निपटने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का हिस्सा रहा है। लेबनान के हिजबुल्ला आंदोलन के उप महासचिव ने कहा है कि इसराइल उस समय तक कारिश गैस फील्ड में पूंजी निवेश नहीं कर सकता जब तक लेबनान अपने समुद्री संसाधन हासिल नहीं कर लेता। उन्होंने कहा कि अपने हक के लिए भीख मांगने का दौर अब खत्म हो गया है। शेख नईम कासिम ने बैरूत में धर्मगुरुओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज लेबनान अपरोक्ष रूप से इसराइल के साथ प्रतिरोध की शक्ति के बल पर वार्ता कर रहा है। उन्होंने लेबनान में जारी संकट से निपटने के लिए शीघ्र मंत्रिमंडल के गठन पर बल देते हुए कहा वर्तमान मंत्रालय लाइनअप से लाभ उठाना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान संकट के समाधान पर बल दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ भेंटवार्ता में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस से पाकिस्तान के लिए गैस पाइपलाइन को व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से अफगानिस्तान संकट का समाधान जरूरी है। पुतिन ने कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि रेलवे लाइन और ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में काम किया जा सकता है। पुतिन के अनुसार इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के लिए गैस पाइपलाइन की परियोजना पर भी काम हो सकता है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे लिए ये काम संभव है, किंतु इससे पहले अफगानिस्तान की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता जैसी मुश्किल मौजूद है जिसको हल किया जा सकता है। अफगानिस्तान की जनता के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। इसी बीच अफगानिस्तान के मामलों में अमेरिका के विशेष दूत थॉमस वेस्ट ने पत्रकारों से बात करते हुए ये कहा है कि हम तालिबान के साथ बातचीत का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि इस देश के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हम तालिबान के साथ सहयोग को अब बहुत जरूरी समझते हैं। फ्रांस में बिजली और गैस के मूल्य बढ़ने जा रहे हैं। फ्रांस की प्रधानमंत्री का कहना है कि देश की जनता ने अगर जिम्मेदारी के साथ बिजली और गैस का प्रयोग नहीं किया तो समस्याएं आ सकती हैं। फ्रांस की प्रधानमंत्री कहती हैं कि हमारे देशवासियों ने गैस और बिजली के इस्तेमाल में अगर पूरी गंभीरता से काम नहीं लिया तो फिर बिजली और गैस के कटने की संभावना भी पाई जाती है। एलिजाबेथ बॉर्न ने कहा कि अगले साल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली और गैस की कीमतों में 15% की वृद्धि की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि कम आय वाले लगभग 1,20,00,000 लोगों की सहायता की जाएगी। उनका कहना था कि ऐसे लोगों को 100 से 200 यूरो के चेक दिए जाएंगे। ये लोग इन पैसों से बिजली और गैस के बिल भर सकेंगे। फ्रांस की प्रधानमंत्री ने बताया कि आगामी जाड़ों में गैस की जरूरत निश्चित रूप से बढ़ेगी। फ्रांस की सरकार की योजना के अनुसार सन 2023 की जनवरी से इस देश में गैस की कीमत में 15% की वृद्धि की जाएगी। इसके एक महीने के बाद बिजली के मूल्यों में भी 15% की वृद्धि कर दी जाएगी। अमेरिका ने चेचनिया के राष्ट्रपति रमजान कदिरोफ को प्रतिबंधित लोगों की सूची में डाल दिया है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान जारी करके चेचनिया के राष्ट्रपति और उनके परिवार के सदस्यों को प्रतिबंधित किया है। बयान में कहा गया है कि रमजान कदिरोफ और उनके परिवार के सदस्यों को प्रतिबंधित किया जाता है। अमेरिका ने सन 2017 में पहली बार रमजान कदिरोफ पर प्रतिबंध लगाए थे। उस समय उन पर अमेरिका की ओर से अपने एक विरोधी को यातनाएं देने का आरोप लगाया गया था। अमेरिका की ओर से चेचनिया के राष्ट्रपति पर प्रतिबंध लगाने से पहले वे ये कह चुके हैं कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का स्रोत है। उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा था कि अमेरिका न केवल आतंकवादी है जो दूसरे देशों पर हमले करने वाला देश है, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का स्रोत भी है। इसी प्रकार से चेचनिया के राष्ट्रपति ने कहा था कि विश्व के 80 देशों में अमेरिका की 750 छावनियां हैं। उन्होंने बताया कि इस समय विश्व के 159 देशों में उसके 1,73,000 सैनिक हैं। अमेरिका के ये सैनिक मुख्य रूप से गैर कानूनी कार्रवाइयां करते हैं और दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी करते हैं। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि मुझको दोषी सिद्ध करने की स्थिति में अमेरिका में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ट्रंप कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि मुझको दंडित किया जाए। गुरुवार को उन्होंने संभावित रूप से स्वयं को दंडित किए जाने के बारे में ये बात कही है। ट्रंप के अनुसार अमेरिका में बहुत सी समस्याएं पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ ऐसी हैं जिनको हमने पहले नहीं देखा था। ट्रंप के आवाज से एफबीआई को 100 अति महत्वपूर्ण वर्गीकृत दस्तावेज मिलने के बाद उन पर अपने घर में सीक्रेट दस्तावेजों को रखने का आरोप लगा है। इस संबंध में उनके विरुद्ध कानूनी ढंग से काम किया जा रहा है। ऐसे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के दंडित होने की स्थिति में उनको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। एफबीआई का कहना है कि ट्रंप पर राष्ट्रपति भवन छोड़ने के दौरान बक्सों में भरकर कागजात को ले जाने का आरोप लगा था। जिन बक्सों को ट्रंप अपने साथ ले गए थे, उन बक्सों में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मौजूद थे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा है कि भारत बीते 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में पिछले 45 वर्षों में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। शिक्षित युवा रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं और वे निराश हैं। उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य है और आज समय की मांग भी यही है कि युवाओं के भविष्य को मजबूती प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं अनेक युवाओं से मिल रहा हूं, सरकार से उनकी उम्मीदों को समझ रहा हूं तथा उनके लिए और कितनी संभावनाएं हम पैदा कर सकते हैं इस बारे में हम विचार भी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यात्रा का उद्देश्य बच्चों, बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों, किसानों और आदिवासियों की बातें सुनना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने कहा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, युवा हमसे खुलकर बातें कर रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम सभी अपने भारत को एकजुट करेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में रूस और चीन के राष्ट्रपतियों की मुलाकात का पश्चिम के लिए क्या संदेश है, जायजा ले रहे हैं अख्तर अब्बास।
उज़्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात की है। इस बीच इस सम्मेलन को लेकर भारत में सबसे ज्यादा कयास इस बात पर लगाए जा रहे हैं कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच भी इस तरह की मुलाकात होगी या नहीं। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जायोव से अलग अलग मुलाकातें करेंगे, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अलग से मुलाकात होने के बारे में अभी भी कुछ निश्चित नहीं है। शंघाई सहयोग संगठन या SCO का गठन 2001 में 6 देशों ने मिलकर किया था। तब चीन और रूस के अलावा मध्य एशिया के 4 देश कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान इसके सदस्य थे। 2017 में पहली बार संगठन में विस्तार किया गया और भारत और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया। अब ईरान भी SCO का सदस्य बनने जा रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध के चलते SCO के इस शिखर सम्मेलन का महत्व कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इस दौरान दुनिया और विशेष रूप से पश्चिम की निगाहें पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात पर थीं। इस मुलाकात में राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर स्पष्ट शब्दों में यह ऐलान कर दिया कि मॉस्को एक ध्रुवीय दुनिया का विरोधी है और इसके लिए किए गए किसी भी प्रयास का विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि एक ध्रुवीय दुनिया बनाने के प्रयास हाल ही में पूरी तरह से घिनौना रूप ले चुके हैं, जबकि दुनिया के अधिकांश देशों के लिए ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कहना था कि दुनिया को इतिहास के अभूतपूर्व परिवर्तनों का सामना है और बीजिंग तथा मॉस्को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति की भूमिका निभाने के लिए तैयार है, ताकि दुनिया में सतत और सकारात्मक विकास के लिए भूमि प्रशस्त हो सके। वास्तव में वर्तमान वैश्विक व्यवस्था पर अगर नजर डालेंगे तो साफ पता चल जाएगा कि चीन, भारत और रूस जैसी शक्तियों का उदय हो रहा है और ये दुनिया की उभरती हुई नई आर्थिक शक्तियां हैं। इसी तरह से ब्रिक्स और SCO जैसे संगठनों का गठन इस बात का सबूत है कि शक्ति का संतुलन पश्चिम से पूरब की ओर झुक रहा है। इसलिए दुनिया के नेतृत्व का अमेरिका का दावा सिर्फ एक खोखला दावा है, जिसका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
अब अमेरिका ने तालिबान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन क्यों, जायजा ले रहे हैं कायम रिजवी।
अफगानिस्तान के मामलों में अमेरिका के विशेष दूत ने तालिबान शासन के साथ पारस्परिक विचार विमर्श के लिए तैयारी की घोषणा की है। अफगानिस्तान के मामलों में अमेरिका के विशेष दूत थॉमस वेस्ट ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, हम तालिबान के साथ बातचीत का समर्थन करते हैं। इस देश के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए तालिबान के साथ सहयोग को हम जरूरी समझते हैं। अमरीकी राजनयिक का कहना था कि तालिबान के साथ बातचीत न करना उचित कदम नहीं है, क्योंकि इस तरह से हम अफगानिस्तान की जनता के लिए कोई काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान अधिकारियों की यात्रा के मामले में छूट देने के बारे में वाशिंगटन का कोई विशेष रुख नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा सुरक्षा मुद्दा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच 13 तालिबान अधिकारियों की यात्रा को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी और उनकी यात्रा की छूट को आगे नहीं बढ़ाया गया। अफगानिस्तान के मामलों में अमेरिका के विशेष दूत वेस्ट ने तालिबान के साथ सहयोग की घोषणा का मतलब यह है कि वाशिंगटन ने तालिबान को लेकर अपनी विदेश नीति में कुछ बदलाव किया है, लेकिन इसके लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान की जनता की जरूरतों को बहाना बनाया है। वेस्ट ने दावा किया है कि जब तक तालिबान के साथ संबंध नहीं होंगे तब तक इस देश की जनता की समस्याओं का समाधान नहीं निकाला जा सकेगा और लोग वर्तमान संकट में फंसे रहेंगे। यहाँ सवाल यह है कि अमेरिका अफगानिस्तान की पूर्व सरकार के पतन का कारण बना और तालिबान के सत्ता पर कब्जा करने के बाद उसी ने अफगानिस्तान की संपत्ति को सीज करके इस युद्धग्रस्त देश में आर्थिक संकट को जन्म दिया, लेकिन अब वही अमेरिका यू टर्न लेते हुए तालिबान के साथ सहयोग को जरूरी करार दे रहा है। सच्चाई यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस और चीन अमेरिका के मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में तालिबान को लेकर नर्म रवैया अपना रहे हैं। तालिबान भी इन देशों को कई बार अफगानिस्तान में निवेश की दावत दे चुका है। इससे वाशिंगटन की चिंता बढ़ गई है कि कहीं तालिबान से दूरी बीजिंग और मॉस्को के लिए अवसर में न बदल जाए। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी में मदद करके अमेरिका ने पड़ोसी देशों के लिए चुनौतियों का एक जाल बिछाया था, लेकिन अब वो इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि कहीं ये चाल उसकी उल्टी न पड़ जाए और इस स्थिति का फायदा उठाकर उसके प्रतिद्वंद्वी उसके हितों को खतरे में न डाल दें। यही वजह है कि बाइडेन प्रशासन अपनी इस गलती को जल्दी से सुधारना चाहता है और तालिबान की ओर उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है।
और अब रुख करते हैं भारत का। हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले जम्मू कश्मीर के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि आर्टिकल 370 को वापस लाया जा सकता है, लेकिन मोदी जी को मनाकर। ब्यौरा दे रहे हैं श्रीनगर से सिप्ते हसन।
कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, जिसने हाल ही में ऑल इंडिया कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया है, ने जम्मू में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि धारा 370 और 35A को वापस लाने के तीन ही तरीके हैं। एक या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर मोदी जी को मनाया जाए, या फिर सर्वसहमति से तमाम दल नई दिल्ली में बैठक लगाए और तभी ये संभव है।
370 वापस लाने। पहला रास्ता मोदी साहब को कोई मनाए।
उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो प्रैक्टिकल राजनीति है, मैं लोगों को धोखा नहीं देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इस वक्त 80% लोग मोदी जी के साथ है, अगर हम उनके साथ वार्ता करते हैं वो उसके लिए तैयार होते हैं तो धारा 370 और 35A वापस आ सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई निर्णय दे सकता है। परंतु उन्होंने कहा कि 3 वर्ष बीत गए परंतु अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से कोई सुनवाई भी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं इस हवाले से अपनी बात वाजिया करना चाहता हूं कि मैं वही बात करूंगा जो संभव हो। उन्होंने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर को राज्य का पूरा दर्जा वापस दिए जाने का मुतालबा करते हुए नई दिल्ली पर जोर दिया कि अगर वो जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया बहाल करना चाहते हैं तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा फौरन वापस किया जाए। उन्होंने कहा कि हम पांडिचेरी या दिल्ली टाइप राज्य नहीं चाहते हैं बल्कि हम फुल स्टेटहुड चाहते हैं, जिसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि कुछ अलगाववादी दलों ने उन्हें डेथ थ्रेट दिए हैं परंतु उन्होंने ये बात वाजिया कर दी कि वो इनसे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उनके विरोध में ऐसे थ्रेट्स आए हैं परंतु मेरा ये मानना है कि हम जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को गले से लगाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द इस हवाले से एक नया दल बनाने जा रहा हूं और उसके तुरंत बाद लोगों के सामने मैं अपनी राजनीतिक पार्टी भी सामने लाऊंगा और मेरा क्या लक्ष्य है वो भी मैं लोगों के सामने रखूंगा। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، راجنیتک چرچا کے بعد اب پیش ہے کارکرم اربعین کی پد یاترا۔
دوستو، اربعین ملین مارچ چل رہا ہے اور اس ملین مارچ سے ہمیں کیا سندیش ملتا ہے اور اس سے ہم کیا پاٹھ سیکھتے ہیں، آئیے اس پر چرچا کریں گے۔ اختر رضوی اور مریم مہردادی کا سلام سویکار کیجیے۔
آج کل ہر طرف اربعین کی زیارت کی چرچا ہے، ایسی زیارت جو محبت اور پریم کو اجاگر کرتی ہے۔ ایک پریمی جس نے صدیوں پہلے اندھیروں کے پرتی گھرنا ویکت کی اور مانو سماج کو پرکاش تک پہنچانے کے لیے سبھی سے مدد مانگی، امام حسین عاشور کے دن اپنے سمست ساتھیوں کی شہادت کے بعد جب اکیلے اور تنہا رہ گئے تو انہوں نے پکارا، کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کیا کوئی انصاف پسند نہیں ہے کہ جو خدا کے لیے میری مدد کرے؟ کیا کوئی رکشا کرنے والا نہیں ہے کہ جو پیغمبر اسلام کے پریوار کی رکشا کرے؟ ہم سبھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ پکار صرف کسی ایک سمے یا استھان سے وشیش نہیں تھی، بلکہ اس میں ہر دور کے انسان کو سمبودھت کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے زیارت کربلا اور وشیش روپ سے اربعین کی زیارت میں ہم امام زمانہ سے کہتے ہیں، ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، جب بھی خدا کی اچھا ہوگی اور آپ اس کے عادت سے پرکٹ ہوں گے۔ اس کے بعد اس زیارت کا یہ مہتوپورن جملہ آتا ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں۔
شیعہ مسلمانوں کے نکٹ اربعین کا مہتو اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ تاریخ حضرت زینب اور کربلا کے شہید ہونے والوں کے پریجنوں سے وشیش ہے۔ کربلا کی لڑائی میں زندہ بچ جانے والے امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زینب یزید کی قید سے رہا ہونے کے بعد کربلا کے دوسرے قیدیوں کے ساتھ اپنے شہیدوں کا چہلم منانے کربلا پہنچے تھے۔ آج اسی پرمپرا کو جاری رکھتے ہوئے دنیا بھر سے کروڑوں شیعہ مسلمان اور غیر شیعہ مسلمان کربلا پہنچتے ہیں اور اپنے امام کو شردھانجلی پیش کرتے ہیں۔
قیدی بنے رہنے کے باوجود حضرت زینب نے پورے ساہس سے اور تارکک شیلی اپنا کر امام حسین علیہ السلام کے ادیشوں کی رکشا کی۔ عاشور ارتھات محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کی شام یزید کی سینا نے کربلا کی لڑائی میں مارے گئے اپنے سینکوں کو دفن کر دیا، لیکن امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں کے پوتر شو زمین پر ایسے ہی پڑے رہے اور انہیں دفن کرنے کی انومتی نہیں دی گئی۔ یزید کے سینیہ ادھیکاریوں نے بندی بنائے گئے امام حسین کے پریجنوں کو، جن میں ادھکانش سنکھیا مہیلاؤں اور بچوں کی تھی، زمین پر پڑے شہیدوں کے شووں کے نکٹ سے گزارا تاکہ شہیدوں اور ان کے پریجنوں کا ادھک سے ادھک اپمان کر سکیں۔
دوستو، امام حسین علیہ السلام نے اپمان جنک جیون پر سمان جنک موت کو پراتھمکتا دی۔ حالانکہ دشمن امام حسین علیہ السلام کو جیون اور موت کے بیچ کمزور درشانا چاہتا تھا، انہوں نے مہیلاؤں اور بچوں کو شد وشد ہوئے اپنے پیاروں کے شووں کے نکٹ سے گزارا۔ ان میں ان مہیلاؤں کا کوئی بھائی ہے، کوئی پتی تو کوئی بیٹا، لیکن یہ مہیلائیں ولاپ نہیں کرتی، اسی لیے کہ ان کی نظریں حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر ٹکی ہوئی تھیں، وہ حضرت زینب کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں۔ جب حضرت زینب امام حسین علیہ السلام کے شد وشد پوتر شریر کے نکٹ سے گزری کہ جس پر سر نہیں تھا اور کوئی انگ اپنی اصلی استھتی میں نہیں تھا، تو تھوڑا سا جھکی، شریر پر پڑے پتھروں اور ٹوٹے ہوئے بھالوں کو دھیرے دھیرے ہٹایا، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی اور اٹھایا اور کہا، ہے ایشور ہماری اس قربانی کو قبول کر۔ یہ اس مہیلا کی آواز ہے جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے کتنا پیار کرتی تھی اور امام حسین علیہ السلام اس کے لیے سب کچھ تھے۔ لیکن اس نے یہ کہہ کر یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو ایشور اور اس کے دھرم کے مارگ میں قربان کر دیا، اب ہم ایشور سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ ہماری اس قربانی کو قبول کر۔
ابن زیاد نے اپنے دربار میں قیدی بنا کر لائے گئے امام حسین کے پریجنوں میں سے حضرت زینب سے جب کہا، تم نے دیکھا ایشور نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے جواب میں کہا، ایشور کی سوگن، میں نے سندرتا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ جنہیں ایشور نے شہادت پردان کی اور وہ اپنی منزل کی اور چلے گئے۔ شہیدوں کے سردار امام حسین کی شہادت کے بارے میں حضرت زینب نے یہ درشٹی کون اپنایا جس سے انیہ مہیلائیں بھی اپنے شہیدوں کے پرتی اپنے کرتویہ کو سمجھ گئیں کہ یہ سمے رونے پیٹنے کا نہیں ہے بلکہ اتیاچاریوں اور ہتھیاروں کے مقابلے میں دڑھتا اور ڈٹ جانے کا سمے ہے۔ اپنے اس ویوہار سے حضرت زینب ایوم انیہ مہیلاؤں نے اسپشٹ کر دیا کہ ہم نے پورن گیان اور جانکاری کے ساتھ اپنے امام کا مارگ چنا ہے اور اگر ایشوریہ دھرم کو اس سے بھی ادھک قربانی کی ضرورت ہوگی تو ہم تیار ہیں۔
قرآن نے اتیاچاریوں اور ظالموں پر لعنت بھیجی ہے اور ان پر لوگوں پر بھی جو چپی سادھے رہتے ہیں لیکن دل سے اتیاچاریوں کا سمرتھن کرتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے اتیاچار اور ظلم کے خلاف کبھی چپ نہیں رہتے بلکہ جہاں تک سمبھو ہوتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور اتیاچاریوں سے دوری بنا کر رکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں اور ہتھیاروں کو مرے ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں لیکن آج بھی ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں اور ان سے اور ان جیسے لوگوں سے دوری بنا کر رکھتے ہیں۔ اس پرکار امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت اور ان سے دوری واسطوں میں ان سبھی لوگوں پر لعنت اور ان سے دوری ہے جو یزید کا انسرن کرتے ہیں۔
اربعین اور عاشورا واسطو میں ستیہ کو اسطیہ سے الگ کرنے اور مانوتا کی رکشہ کرنے کا آندولن ہے۔ یہ ایسی روشنی ہے جسے دیکھ کر لوگ اندھیروں کو پہچان سکیں گے، لوگ اسے یہ سندیش لے سکیں گے کہ اگر جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو بھی سچائی کے مارگ پر ڈٹے رہنا ہے، انہیں اپنے امام کی طرح دھرم کی نشانیوں کو سپشٹ کرنا ہے اور اس کی روشنی میں دنیا کو شانتی کا سندیش دینا ہے۔ امام حسین کے آندولن کا بھی مول ادیش یہی تھا۔ امام حسین نے کہا تھا، ہے ایشور، تو جانتا ہے کہ جو قدم ہم نے بڑھایا ہے وہ ستہ حاصل کرنے یا دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارا ادیش یہ ہے کہ دین کی نشانیوں کو پھر سے ان کا صحیح استان پردان کر سکیں اور تیرے دیش میں سدھار کر سکیں تاکہ اتیاچار گرست لوگ سرکشت رہ سکیں اور تیرے دھارمک آدیشوں پر عمل کیا جا سکے۔
امام حسین علیہ السلام کے مطابق نرنتر اور لمبا انوبھو بدھی کی شکتی میں وردھی کرتا ہے۔ اربعین کے زائرین امام حسین علیہ السلام کی اس سفارش پر عمل کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی، ہے میرے بیٹے، ستیہ کے راستے پر ڈٹے رہنا یدپی اس میں کٹھنائیوں کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اربعین پر کربلا جانے والے زائرین کو بھی اسی محبت اور بھاونا کی وجہ سے دنیا کو گریما اور سوتنترتا کی سنسکرت سے پریچت کرانے کے لیے چنا گیا ہے۔ وہ سندر مانویہ گنوں سے سسجت ہیں اور وہ مانوتا اور انسانیت سکھاتے ہیں۔ جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، سندر نیتک گنوں کو سیکھنے کا پریاس کرو اور اس آدھیاتمک پونجی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔
مانو اتہاس میں وبھن یدھ ہوئے ہیں، اسنکھیہ لوگ مارے گئے ہیں और उनके घरों को उजाड़ा गया है। इन युद्धों के दहकते हुए शोलों में छोटे बड़े महिलाएं और पुरुष जलकर भस्म हो गए हैं, जैसा कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध में 3 करोड़ से अधिक लोग काल के गाल में समा गए। लेकिन क्या कभी सुना है कि विश्व में कहीं भी इन लोगों के लिए कर्बला के शहीदों की भांति शोक सभाएं आयोजित की जाती हों और उन्हें याद किया जाता हो?
सच्चाई ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कर्बला में केवल एक विशाल सेना का सामना नहीं था, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक भ्रष्ट एवं अंधेरे में डूबी हुई दुनिया का सामना था। लालच, अहंकार, भ्रष्टाचार और अनैतिकता ने लोगों को बेगैरत और कमज़ोर बना दिया था और उनसे उनके धार्मिक कर्तव्य के एहसास को छीन लिया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोह माया की दुनिया और दबाव के सामने नहीं लड़खड़ाए और किसी भी प्रकार के संदेह या कमजोरी का प्रदर्शन नहीं किया।
कर्बला में अच्छाई और बुराई के बीच आध्यात्मिक संघर्ष में एक विशाल सेना के मुकाबले में मुट्ठी भर लोगों की जीत हुई और अज्ञानता ज्ञान पर विजय प्राप्त नहीं कर सकी। इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कड़ी भूख और प्यास में आखिरी सांस तक जंग की और शहादत हासिल की। इस प्रकाशमय कारवां के बचे खुचे लोगों को, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बीमार थे, कैदी बना लिया गया और सबसे पहले कूफा ले जाया गया। इमाम हुसैन के 72 साथियों ने मानव इतिहास में कुर्बानी, बलिदान और वीरता का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया और इतिहास के पन्नों में लोगों के दिलों में अमर हो गए।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, हमारा आज का प्रयास ही आपको कैसा लगा, इस बारे में अपने विचार हमें लिख भेजिएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। और अब पेश है आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम पत्र संसार।
दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपने भैया रविश और दीदी
मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
तो दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार के शुरू करने से पहले मैं हम जानना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां भी होंगे अच्छे ही होंगे, जैसा कि दीदी कहती हैं, और मुझे भी इस बात की उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और दीदी, ऐसा है कि
कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे।
हमारे कार्यक्रम को सुनने वालों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और ये एक बहुत अच्छा संकेत है। साथ ही ये कि इस वक्त जो है वो इराक के पवित्र नगर कर्बला में बहुत बड़ी संख्या में जो है वो श्रद्धालु मौजूद हैं, और वो भी वहां से भी लगातार हमारे पास संदेश आ रहे हैं।
जी, तो भैया सबसे पहले मैं ईमेल से शुरुआत कर रही हूँ, हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। तो श्री गंगानगर राजस्थान से ओपी वर्मा, ये टेलर हैं, लिखते हैं कि मैं रेडियो तेहरान का नियमित और बहुत पुराना श्रोता हूँ। यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम मुझे बेहद पसंद आते हैं, जिनमें से कुरानेश्वर चमत्कार, ईरान भ्रमण, विश्व समाचार, राजनीतिक चर्चा, उज्जवल भविष्य, पत्र संसार इत्यादि कार्यक्रम मुख्य हैं। आज मैंने उज्जवल भविष्य कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें बताया गया कि इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरानी महिलाओं ने काफ़ी अभूतपूर्व प्रगति की है और अब ईरानी महिलाओं की सामाजिक कार्य में भागीदारी बढ़ने लगी है। आज शिक्षा में भी ईरानी महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं हैं, लगभग 90% महिलाएँ शिक्षित हैं, जो विकासशील ईरान को नई दिशा की ओर ले जा रही हैं। जब नारी बगैर किसी डर भय के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है तो उसे देश की उन्नति और कामयाबी निश्चित है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अंत में मेरी ओर से ईरानी इस्लामिक क्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और रेडियो तेहरान की मधुर आवाज़ विश्व के कोने कोने में पहुंचे, यही मैं कामना करता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद ओपी जी। और लेकिन आपके कमेंट्स के यानी आपके जो यानी हमारे पास आपने ईमेल भेजा है दीदी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन इनके ईमेल से एक बात मुझे जरूर समझ में आ गई, मुझे नहीं पता है कि ये जरूर और जरूर लेडीज टेलर हैं, इसलिए कि इनको जो है वो नारी नहीं महिलाओं के बारे में जो है काफी अच्छी चीजें लगी और बातें लगी। तो इस उम्मीद के साथ अगले ईमेल में आप जरूर बताइएगा कि आप टेलर जो है लेडीज हैं जेंट्स, लेकिन मैंने जो अंदाजा लगाया है वो मैं समझता हूँ कि मैं सही अंदाजा
लगाया। जो भी हो लेकिन हमारे अच्छे और पुराने श्रोता है, इसे हमें बहुत गर्व है। तो चलते हैं अगले ईमेल पढ़ने के लिए चलते हैं। थी जरीफ खान नियाजी मियानवाली, ये पाकिस्तान से है और लिखते हैं कि बहुत दिनों के बाद रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा सुनी, मैं प्रसारण को स्पष्ट रूप से सुन सकता हूं। मैं रेडियो तेहरान की हिंदी टीम को अरबाइन पर श्रद्धांजलि देता हूं और कुछ निजी व्यस्तताएँ सामने आई जो रेडियो से दूर रहा, अल्लाह आपके सभी दोस्तों के लिए सहायक हो, आमीन।
बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, और इसी तरह अपनी दुआओं से अपने ईमेल अपने जो आप हमको भेजते हैं उससे नवाजते रहें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं और इस वक्त आप सुन भी रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम पत्र संसार, तो अब चलते हैं दीदी के पास और मालूम करते हैं दीदी के आज जो इनका इतना बड़ा पिटारा है सांस्कृतिक प्रोग्राम का, उसमें खाने की चीज़ है, पीने की चीज़ है या फिर खाली घुमा के दीदी हमें छोड़ देंगी। चलते हैं दीदी के पास।
जी आज हम ईरान की प्रसिद्ध गिलिम के बारे में बात कर रहे हैं। ईरान के फार्स प्रांत के हावर्स गांव में 105 वर्ग मीटर का सबसे बड़ा गिलीम 40 दिनों में 7 फुल टाइम और 3 पार्ट टाइम बुनकरों द्वारा बुना गया है। एक उद्यमी महिला की देखरेख में एक विशिष्ट डिजाइन के साथ इसे बनाया गया है। गिलीम कतर के आदेश पर बुना गया था। यह गिलीम 66,150 मीटर का बनाया गया है जिससे ये अब तक का सबसे बड़ा गिलीम बुना हुआ है। गिलीम और इसके विभिन्न प्रकार ईरानी घरों में उपयोग की जाने वाली सबसे प्रसिद्ध और सबसे लोकप्रिय कलाकृतियां हैं। बकरियों के ऊन या बालों का उपयोग करके गिलीम की बुनाई करना आम बात थी, लेकिन धीरे धीरे कपास का भी प्रयोग होने लगा। आज चूंकि सिंथेटिक कपड़ों ने उद्योग में अपनी जगह बना ली है, कई गिलीम सिंथेटिक जैसे एक्रेलिक धागे का उपयोग करके बुने जाते हैं। गिलीम बुनाई ईरान के अधिकांश हिस्सों में होती है, इसलिए प्रत्येक गिलीम अपनी अनूठी डिजाइन और रंग होने के कारण एक विशेष क्षेत्र की पहचान होती है। ज्योग्राफी पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण ईरानी गिलीम शाह सवानी, लोरी, खमसे, बलूची, हरसीन, कशकाई, साने, तुर्कमन, जरंडी और अफशारी हैं। ईरान में गिलीम आमतौर पर या तो साधारण बुनाई एक तरफ और एक पूर्व निर्धारित ज्यामितीय डिजाइन के साथ होती है, या उभरा हुआ पुष्प एक साधारण पृष्ठभूमि के साथ लेकिन एक गालीचा की तरह उभरा हुआ पुष्प पैटर्न के साथ होता है या वर्णी होती है। तो आपने सुना गिलीम के बारे में।
दीदी एक बात आपको मैं बताऊं, मैं आप पढ़ रही थी गिलीम के बारे में बता रही थी, मुझे एक चीज याद आ गई और ये मुहर्रम के संबंधित है, इमाम हुसैन की शोक सभाओं में विशेषकर आप एक शहर का नाम सुना होगा हमारे श्रोताओं ने, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पर एक तो रमजान में 21 रमजान को गिलीम का ताबूत निकलता है
जी।
और इसी तरह जो आमतौर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शोक सभाएं होती हैं उसके अंदर जो फर्श बिछाया जाता है उस फर्श में बीच में एक चीज बिछाई जाती है वो भी गिलीम होती है।
अच्छा,
तो आज मुझे खुद मेरे अंदर भी यानी इस जानकारी में मेरे जो है वो वृद्धि हुई इसको सुनने के बाद, और एक बहुत ही प्राचीन ये काम है यानी
कलाकृति है जी
जी जी, जो ईरान से जो है पूरी दुनिया में फैली है
जी।
तो दोस्तों अब चलते हैं दीदी के पास और आप ही द्वारा हमारी जो खबरें हैं। एक बात दीदी हम जरूर कहना चाहेंगे, हमारे इस वक्त जो जो जहां जहां दुनिया के जिस जिस कोने में हमारे श्रोता इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे ईमेल एड्रेस पर, हमारी जो फेसबुक पे खबरें जाती हैं, जो ट्विटर पे खबरें जाती हैं, आप उस उन खबरों पे कमेंट्स करते हैं, और जो लोग अभी कमेंट्स नहीं करते हैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वो जो है इस पर कमेंट्स करें ताकि हम आपके कमेंट्स को अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकें। तो आप दीदी के पास चलते हैं, देखते हैं कि आज किन किन लोगों ने और किस किस खबरों पर कमेंट किया है।
जी, महारानी एलिजाबेथ के बाद ब्रिटेन के नए किंग के सामने चुनौतियां, इस पर जावेद लिखते हैं, अब नकली राजा, धन प्रेमी, लापरवाह गुलामों और उपनिवेशवादियों के उन विश्वासघाती परिवार की गुलामी विरासत के साथ जारी रहेगा। अरब गायों को हमेशा की तरह दूध देने की लाइन में खड़ा किया जाएगा। चोरों और काफिरों के बैंकिंगम नरक महल में रिश्वत की बाढ़ जारी रहेगी।
जावेद साहब, आपके कमेंट्स से काफी कुछ जो है हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है और हमें भी कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आज जो विश्व में ज्यादातर समस्याएं हैं, चाहे वो दो पड़ोसी देशों के दरमियान हो या दो महाद्वीपों के दरमियान हो, इस समस्याओं की अगर जड़ तक आप जाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटेन का, इंग्लैंड का रोल है, वहाँ के शासकों का रोल है, वहाँ के जो ये वहाँ के जो राजा हैं उनका रोल है, वहाँ की क्वीन का रोल था। तो एक बहुत बड़ी समस्या दुनिया के अंदर इन लोगों ने खड़ी की है, जिसका आज तक दुनिया के जो लोग हैं, आम जनता है, वो उसको भुगत रही है और उन समस्याओं को झेल रही है।
जी, ईरान के खुफिया मंत्रालय और मंत्री पर अमेरिका के प्रतिबंधों की आलोचना, इस पर शब्बीर लखानी लिखते हैं, ईरान के खिलाफ कुटिल साजिशों और धूर्त योजनाओं की कोई कमी नहीं है, ये केवल इस निंदनीय तथ्य को रेखांकित करता है कि मुख्य रूप से मुस्लिम देशों को गुमराह किया जाता है या स्वेच्छा से निहित स्वार्थों की बोली लगाई जाती है। ईरान पर साइबर हमले के समय नाटो और यूएन कहाँ थे, या स्टक्सनेट जिसके इस्तेमाल पर इसराइल ने खुलकर अपनी बात रखी, और पश्चिम और की खुफिया एजेंसियों द्वारा अन्य बेशर्म हमले, अब समय है हाई अलर्ट पर रहने और इस विशाल बुराई को खूंद करने के लिए प्रतिरोधी देशों के साथ मिलकर काम करने का। मुझ खल का इतिहास भी उतना ही घिनौना है और इसे आतंकी संगठन से हटाकर पर्दाफाश किया गया है, सभी को पता है।
तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त आप कार्यक्रम पत्र संसार सुन रहे हैं और हमारा कार्यक्रम जो है वो इस वक्त मैं समझता हूं कि दुनिया के अच्छे कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है। काफ़ी लोग इसका स्वागत करते हैं, हमें इस पे संदेश देते हैं और ये हमारा मनोबल भी बढ़ाता है। और इन्हीं में से एक हमारे जो सबसे अच्छा पार्ट है कार्यक्रम का, वो है हम अपने श्रोताओं के विचार सुनते हैं। तो चलते हैं दीदी के पास और देखते हैं कि आज किसका विचार दीदी के पास हाथों में है।
जी, ये हैं मोहम्मद अरशद कुरैशी और ये पाकिस्तान से हैं, तो चलते हैं इनके विचार सुनते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन कराची पाकिस्तान से मुखातिब हूँ। अक्सर जो मैं रेडियो दूसरे ममालिक के रेडियो की वेबसाइट, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे, ऐप पे और उस पे सुनता हूँ, तो उसमें एक बहुत बड़ा फर्क मुझे नजर आता है जो रेडियो तेहरान का मैं देखता हूँ, बरमला उसका इजहार करूंगा, क्योंकि कई चीज मुनफरिद है। एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप रेडियो तेहरान से कुछ दिनों गैर हाजिर रहें या दूरी रहे तो मेजबान खुद आपसे राबता करते हैं, आपकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं, इससे बड़ी हौसला अफजाई होती है। मैं शुक्रगुजार हूँ रेडियो तेहरान की तमाम अराकीन का। सबसे मुनफरिद बात कि आपके प्रोग्राम अपडेट होते हैं वेबसाइट पे और उसको सुना जा सकता है, और फिर सबसे अच्छी और खूबसूरत बात कि आप जो खतूत लिखते हैं वो نہ صرف پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، فریکوینسی پہ آپ سن سکتے ہیں، پھر اس کو آپ ریکارڈنگ پہ سن سکتے ہیں، آرکائیو میں، ویب سائٹ پہ، کسی ریڈیو کے نشریاتی ادارے میں ایسا نہیں۔ پروگرام سب بہت اچھے ہیں اور بہت اس سے معلومات ہوتی ہے، جو معلومات میرے ذہن سے مٹ رہی ہوتی ہے وہ بھی دوبارہ سے اپنے جسے کہتے ہیں کہ میموری میں واپس آ جاتی ہے۔ اور ریڈیو تہران کے سیاسی پروگراموں میں یا اس طرح دوسرے جو ایک اہم تہواروں پر، اہم موقعوں پر، اہم مناسبتوں پر جو پروگرام نشر ہوتے ہیں وہ بھی بہت خوب ہیں۔ اور کیا خوبصورت ہوتا ہے منظر کے تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوتا ہے، بہت بہت اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے، اتنے اچھے، اتنے خوبصورت سیاسی، مذہبی، سماجی پروگرام ہم تک ہر ذریعے سے پہنچانے کے لیے۔ اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ اسلامی ملک کے اتنے بہترین اور عمدہ پروگرام اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف فریکوینسی پہ بلکہ مختلف طریقوں سے وہ ہم تک پہنچائے جاتے ہیں۔ ہماری دعائیں ہمیشہ ریڈیو تہران کے ساتھ ہیں۔ اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔
دوستو، اس آشا کے ساتھ کہ آپ کو قریشی صاحب کے وچار پسند آئے ہوں گے، اب ہمارے پاس سمے بالکل نہیں ہے، تو اس لیے اپنے بھیا رویش اور دیدی
مریم مہر دادی کو
اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
دوستو، یہ تھا کارکرم پتر سنسار۔ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ ای میل آپ نوٹ کر سکتے ہیں، hindi@ws.irib.ir۔ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کرنے کے لیے آپ اس پتے پر آ سکتے ہیں، partstoday.com/hi۔ تو اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کی یہ سبھا اب یہیں پر سمپن ہو رہی ہے۔ آپ سبھی سے اب ہم انومتی چاہتے ہیں۔ شبھ راتری، خدا حافظ۔ Thank you.